माधव और राधिका की शादी को कुछ दिन बीत गए थे। राधिका ने पूरे घर को संभाल लिया था, अपनी गृहस्थी में रम गई थी। माधव की मोहब्बत पाकर दिन ब दिन निखरती जा रही थी। चेहरा सूरत सा चमकता रहता था, लबों पर मुस्कान बिखरी रहती थी। अपनी घर भी होकर आई थी वो, और वहां भी सभी खुश थे। सुबह का वक्त था, राधिका माधव को नाश्ता करवा रही थी। अनुपमा जी वहीं बैठी साग साफ कर रही थी, शिखा कॉलेज जा चुकी थी। माधव, कभी बहू को कहीं बाहर घुमाने फिराने भी लेकर जाओ, तुमने तो काम के आगे सब भुला ही दिया है। सुबह जाते हो तो रात को वापस आते हो, और बहू जब से शादी हुई है बस घर की चारदीवारी में बंद है। सारा घर संभाल लिया है, सबका ख्याल रखती है, तुम भी जरा उसका ख्याल रखो। नई नई शादी हुई है, कहीं घुमाने फिराने ले जाओ, एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ। अभी जितना साथ में वक्त बिताओगे रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। अनुपमा जी ने प्यार भरी झिड़की के साथ उसे समझाया भी। राधिका से वो खुश थी, ये देखकर माधव के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई। वो अनुपमा जी को देखकर मुस्कराया, फिर राधिका की ओर नजरें घुमाते हुए बोला, आज शाम को तैयार रहिएगा, जल्दी आऊंगा तो बाहर ले चलूंगा आपको। राधिका ने अनुपमा जी को देखा तो वो मुस्कुराकर उसके पास चली आई। पति है तुम्हारा, बाहर लेकर जाना चाहता है तो चली जाओ, अपने वक्त में हम भी खूब घूमे फिरे हैं। अब तुम बच्चों का टाइम है, घूमो फिरो, जिंदगी जियो। एक बार जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी फिर जल्दी से ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उन्होंने प्यार से राधिका के सर पर हाथ फेरा और वहां से चली गई। चलेगी या नहीं? माधव के सवाल ने राधिका का ध्यान अपनी ओर खींचा और उसने धीरे से हामी भर दी। माधव हाथ धोकर उठा और उसके माथे पर प्यार का बोसा देकर मुस्कुराते हुए घर से निकल गए। पीछे छोड़ गया राधिका को, जिसका रोम रोम उसकी मोहब्बत की खुशबू से महक रहा था। शाम को माधव जल्दी तो आया, पर राधिका अपने कपड़ों में उलझी हुई थी। शादी के बाद पहली बार कहीं बाहर जा रही थी माधव के साथ, बस इसीलिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या पहने और क्या नहीं। राधिका, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? माधव राधिका को सुबह वाले कपड़ों और बिखरे हाल में देखकर चौंक गया। राधिका जो जाने कब से कबर्ड के सामने खड़ी अपने बालों को खुजाने में लगी थी, माधव की आवाज सुनते ही हड़बड़ाते हुए उसकी ओर पलट गई। आप इतनी जल्दी आ गए? राधिका आंखें भाड़े उसे देख रही थी, जबकि उसका अवस्था देखकर माधव अचरज में पड़ गया था। हाँ, कहा तो था आपको कि जल्दी आऊंगा, पर आप अभी तक तैयार नहीं हुई, और अपने बालों का ये क्या हाल किया हुआ है आपने? बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी बड़ी हो गई। सक पकाते हुए उसने अपनी हथेली से अपने बिखरे बालों को संभालने लगी। माधव धीमे कदमों से चलते हुए वो राधिका के पास पहुंचा, उसकी बाहों को पकड़कर नीचे किया और खुद उसके बिखरे बालों को संवारते हुए बड़ी ही मोहब्बत से सवाल किया, अब किस बात की उलझन थी आपको जिसकी सजा आपने अपने इन बेचारे बेकसूर बालों को दे दी? राधिका ने पहले आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा, फिर कुछ सोचते हुए उसके लबों पर मीठी सी मुस्कान बिखर गई। इतने अच्छे से जानते हैं आप मुझे, बीवी हैं आप हमारी, और उससे भी पहले दोस्त, इतना तो जानना बनता है हमारा आपको। चलिए बताइए, क्या कन्फ्यूजन थी आपको? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। मम्मी जी ने मुझे घंटे भर पहले तैयार होने भेज दिया था, और तब से मैं बस अलमारी के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े ही देख रही हूँ, पर समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा पहनूं और कौन सा नहीं। अब आप आ गए हैं तो आप ही बता दीजिए कि क्या पहनूं। राधिका ने बड़ी ही उम्मीद से उसे देखा। माधव सारे वक्त उसकी क्यूट सी शक्ल देखकर मुस्कुराता रहा और अंत में उसके फूले फूले गाल को पकड़कर हल्के से हिला दिया। अभी ही बता देते हैं। अब अलमारी के सामने खड़ा माधव हैंगर हिला हिलाकर कपड़े देख रहा था। कुछ देर की कन्फ्यूजन के बाद माधव की नज़र गाजरी रंग के खूबसूरत सी साड़ी पर पड़ी और उसकी आंखें चमक गईं। आज आप ये पहनेंगी। साड़ी पर नजर पड़ते ही राधिका के लबों पर मुस्कान खिल गई। हम कहाँ जाने वाले हैं? राधिका ने चूड़ियां पहनते हुए माधव को देखा। वो अभी अभी कमरे में लौटा था और अब राधिका की ओर ही बढ़ रहा था। कहीं भी, जहां आप कहें। ऐसे कैसे, आपने कुछ तो सोचा होगा? राधिका ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अपनी पलकों को झपकाया। माधव ने उसकी कलाई थामी और खुद से उन्हें रंग बिरंगी चूड़ियों से सजाने लगा। सोचा तो था कि आपको मूवी के लिए लेकर जाऊं, फिर किसी अच्छे से होटल में डिनर करवाऊं, कुछ वक्त आपके साथ बिताऊं और फिर वापस घर। टिकट ले ली क्या आपने? राधिका ने उसके चुप होते ही सवाल किया, जिस पर माधव ने इनकार में सर हिलाया और राधिका के परेशान चेहरे पर राहत के भाव उभर आए। अच्छा हुआ नहीं ली, आज मेरा मूवी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। और मूवी देखने के लिए कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है, वो तो घर पर रहकर भी देख सकते हैं। यहाँ बस हम दोनों होंगे तो वहां से ज्यादा एंजॉय कर सकेंगे। अच्छा तो हुजूर, आप ही बता दीजिए कि मूवी देखने नहीं जाना तो और कहाँ चलने का इरादा है आपका? माधव ने उसकी चूड़ियों से भरी कलाइयों को लबों से चूमते हुए निगाहें राधिका की ओर उठाई, जो उसके इस प्यार भरे एहसास में सिमट सी गई थी। आज मौसम बहुत सुहाना है, तो मैं आपके साथ बाइक पर इस खुशनुमा मौसम को खुलकर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपके साथ रोड साइड लगी रेड़ियों से छोले भटूरे, गोलगप्पे और चाट पापड़ी खाना चाहती हूँ। आपकी बाहों को थामकर सड़क किनारे पैदल चलना चाहती हूँ। ये सब छोटी छोटी चीज़ें दे सकेंगी आप मुझे? सच में छोटी छोटी मासूम सी ख्वाहिशें थी उसकी, जिसमें कोई दिखावा नहीं था। अपनी मासूम सी बीवी की चाहत सुनकर माधव मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा मैं। माधव ने ड्रेसिंग टेबल से बिंदी का पत्ता उठाकर साड़ी के मैचिंग की छोटी सी बिंदी उसके माथे पर सजा दी। मांग को अपनी मोहब्बत के रंग से सजाया और उसका हाथ थामे बाहर चलाया। अनुपमा जी ने दोनों की नजर उतारी और जाने को कहा। आज शादी के बाद पहली बार और ऐसे दूसरी बार राधिका माधव की बाइक पर बैठी, पर उन दोनों बारों के उसके व्यवहार में जमीन और आसमान का अंतर था। अब वो झिझक मिट चुकी थी और रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि राधिका ने पूरे अधिकार से एक हाथ से उसके कंधे तो दूसरे से उसकी कमर को थामा हुआ था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थीं और राधिका आंखें मूंद माधव की खुशबू से अपनी सांसों में महकाते हुए महसूस कर रही थी इन एहसासों को। ये खुशनुमा मौसम, ठंडी हवाएं, बाइक का सफर और माधव का साथ, सब कुछ आम सा होकर भी बेहद खास था। बाइक दौड़ रही थी अनजान गलियों में, हवाएं गुफ्तगू कर रही थीं। राधिका और माधव भी एक दूसरे की करीबियों के एहसासों से अपने मन को महकाए इन लम्हों को जी रहे थे। काफी दूर निकलने के बाद माधव ने एक जगह बाइक रोकी। मार्केट एरिया सा लग रहा था। हो चलिए आपको यहाँ के मशहूर छोले भटूरे खिलाते हैं। माधव ने राधिका की हथेली थामी और छोले भटूरे के स्टॉल के पास चलाया। कुछ देर में उनके टेबल पर उनका ऑर्डर आ चुका है। माधव ने बस एक ही प्लेट मंगवाई थी। उसने भटूरे को तोड़कर उसमें छोला लिया और राधिका की ओर बढ़ा दिया। राधिका ने भी मुस्कुराकर उसने वाले को अपने मुँह में ले लिया। सॉफ्ट और हल्का क्रिस्पी भटूरा, उस पर छोले का स्वाद ऐसा कि बंदा उंगलियाँ चाटता रह जाए। मतलब क्या लाजवाब छोले भटूरे थे। राधिका की आँखें चमक उठी थी उसे खाकर। ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने पहले कभी इतने टेस्टी छोले भटूरे नहीं खाए। तो अब खाइए, माधव ने मुस्कुराते हुए एक और बाइट उसकी ओर बढ़ा दिया। तो राधिका ने इनकार में सर हिलाया और खुद भटूरे में छोला लगाकर उसकी ओर बढ़ा दिया। यूं ही दोनों ने एक दूसरे को खिलाते हुए छोले भटूरों का आनंद लिया। फिर माधव ने उसे गोलगप्पे खिलाए, जिन्हें राधिका ने जबरदस्ती माधव के मुँह में भी ठूस दिया। इसके बाद पापड़ी से पेट ओवरलोड किया गया और अंत में मीठे मीठे गुलाब जामुनों ने तबीयत को खुश कर दिया। पेट पूजा हो गई, अब थोड़ी वॉक हो जाए, माधव ने अपने रुमाल से राधिका की चाशनी में डूबे होठों को साफ करते हुए कहा, जिस पर राधिका ने मुस्कुराकर हामी भर दी।
एक दूसरे की हथेली थामे सड़क किनारे चलते हुए वो कुछ दूर निकल आए थे। अंधेरा गहराने लगा था, पर दोनों ही इन लम्हों में खो गए थे। चलते हुए राधिका ने अपना सर माधव की बाँह से टिका दिया। माधव ने नजरें उसकी ओर घुमाई। स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाती रोशनी में चमकते राधिका के खूबसूरत से सांवले मुखड़े पर सौम्य सी मुस्कान बिखरे देखकर वो भी मुस्कुरा दिया। दोनों घर पहुंचे तो अनुपमा जी उन्हीं का इंतजार कर रही थीं। दोनों के खुशी से खिले चेहरे देखकर उनके लबों पर संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। जाओ दोनों, जाकर सो जाओ, और ऐसे ही कभी कभी बहू को बाहर लेकर जाते रहना। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, पर बहू को भी वक्त देना शुरू करो। कितनी खुश और खिली हुई लग रही है आज। माधव ने तिरछी नजरों से राधिका को देखा, जो आज सच में बाकी दिनों से ज्यादा खिली हुई लग रही थी। चेहरे पर अलग ही नूर बिखरा था और मुस्कान तो लबों पर यूं ठहरी थी जैसे अब यही उसका परमानेंट ठिकाना बन गया हो। जी मम्मी, ध्यान रखूंगा। अनुपमा जी ने प्यार से राधिका के सर पर हाथ फेरा और दोनों को सोने भेज दिया। इन दिनों उन्होंने बहुत करीब से सुमन और राधिका में अंतर को देखा और महसूस किया था। जिसे वो आकाश का चमकता चांद समझकर अपने घर लाई थी, वो अमावस की काली रात बनकर उनके परिवार की सारी खुशियां निकल गई थीं। और जिसे चूल्हे की राख समझकर ठुकरा दिया था, उसने उनके घर में कदम रखते ही उनके घर को खुशियों से रोशन कर दिया था। उनकी पसंद माधव की पसंद के आगे बुरी तरह शिकस्त खा चुकी थी, फिर भी वो खुश थीं। राधिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने गहने उतार रही थी, तभी माधव ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिका दी। इस वक्त आप बिल्कुल उस कोमल हसीन कली सी लग रही हैं जो खिलने को बेताब हैं। माधव की कशिश भरी निगाहें मिरर में झलकते राधिका के खूबसूरत वजूद को निहार रही थीं। राधिका ने भी नजरें उठाई और माधव को अपने इतने करीब देखकर मुस्कुरा दी। ये कली तो बहुत पहले ही आपके प्रेम और सानिध्य को पाकर खिल उठी। अच्छा, देखूं तो सही, माधव ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। फिर अपनी हथेली से उसकी कमर व पेट को सहलाते हुए उसके गर्दन को अपने लबों से तलाशने लगा। राधिका उसकी बाहों में कसमसा उठी। सीने में मौजूद दिल बेचैन से जोरों से धड़कने लगा, सांसें भारी होने लगीं और अपनी आंखों में अपनी भीतर जब्त करते हुए राधिका ने अपने निचले होंठ को दांतों तले दबा लिया। माधव की शरारत जरा बढ़ी, दूरियां कुछ और कम हुई। राधिका की गर्दन से फिसलकर अब माधव के लब उसकी खुली पीठ पर थिरकने लगे। अपनी उंगलियों में उलझाकर उसने उसकी ब्लाउज की डोरी भी खोल दी और उसकी कमर पर हल्की सी चिंटी काट दी। राधिका के लरसते लबों से हल्की सी सिसकी निकल गई। वो माधव की बाहों में समाने को मचल उठी, सांसें बेकाबू हो गई। माधव ने जैसे ही उसकी कमर को आज़ाद किया, राधिका पलटकर उसके गले से लग गई और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। माधव उसकी धड़कनों के शोर को सुनकर मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान में सरगोशी की। मुझे तो अभी भी मेरी बाहों में सिमटी ये लड़की नाजुक कली सी लग रही है, जो मेरा स्पर्श पाकर ही खुद में सिमट जाती है और मेरी पनाहों में आकर खिल उठती है। राधिका ने पलटकर कुछ जवाब ना दिया, क्योंकि सच ही कहा था उसने। उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचे राधिका अपनी बेकाबू हुई धड़कनों और बहकती सांसों को काबू में करने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी, जो माधव की नज़दीकियों से हर बार ऐसे ही परेशान किया करती थी उसे। और माधव उसे अपनी बाहों में भरे अपनी महबूबा को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसकी बेचैनी का सबब भी वही था और सुकून का जरिया भी वही था। टू बी कंटिन्यूड।